नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भारत की 21वीं सदी के निर्णायक सुधार के समर्थन का आह्वान किया। विशेष संसद सत्र से पहले नई दिल्ली में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव प्रचार तेज, विभिन्न दलों के शीर्ष नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाह की नाकेबंदी की घोषणा के बाद तेल की कीमतों में $100 प्रति बैरल से अधिक की वृद्धि। पश्चिम एशिया संकट गहराने के साथ सेंसेक्स में लगभग 1.2% की गिरावट, निफ्टी में लगभग 231 अंक की गिरावट दर्ज। सुविख्यात पार्श्व गायिका आशा भोसले का अंतिम संस्कार आज मुंबई में और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम हैदराबाद में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की नारी शक्ति अपने दृढ़ साहस, आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर लगातार नई ऊंचाइयां छू रही है। नई दिल्ली में आज नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत 21वीं सदी में महिला सशक्तिकरण को समर्पित एक बड़ा निर्णय लेने जा रहा है। उन्होंने कहा कि संसद नया इतिहास रचने जा रही है, जिसमें भूत और भविष्य की महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा।
21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय यह है, नारी शक्ति वंदन को समर्पित है। हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है, एक ऐसा नया इतिहास जो अतीत की संकल्पनाओं को साकार करेगा, जो भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में महिला आरक्षण अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत करती है। श्री मोदी ने कहा कि पंचायती राज संस्थान महिला नेतृत्व का उत्कृष्ट उदाहरण है। श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान में 14 लाख से अधिक महिलाएं स्थानीय सार्वजनिक निकायों में सेवाएं दे रही हैं।
आज भारत में 14 लाख से अधिक महिलाएं लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। लगभग 21 राज्यों में तो पंचायतों में उनकी भागीदारी करीब करीब 50% तक पहुंच चुकी है। लाखों महिलाओं की राजनीति और सामाजिक जीवन में ये सक्रियता दुनिया के बड़े बड़े नेताओं और राजनीति के विशेषज्ञों को भी बहुत ही हैरान करने वाली बात होती है और इससे भारत का बहुत गौरव बढ़ता है।
महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सशक्तिकरण, आत्मसम्मान और लोकतांत्रिक भागीदारी को सुनिश्चित करता है।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारी मातृशक्ति के वर्षों के संघर्ष और साधना की लोकतांत्रिक सिद्धि का महापर्व है। यह महिलाओं के आत्मसम्मान और लोकतांत्रिक भागीदारी को सुनिश्चित करने वाला युगांतरकारी परिवर्तन है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हमें यह दृष्टि दी है जिससे आज भारत की बेटियां विकास रथ की ध्वजवाहक बन रही हैं और आपके वुमेन लेड डेवलपमेंट के विजन के साथ विश्व पटल पर अपनी नई पहचान स्थापित कर रही है।
इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी नीतियों और योजनाओं के केंद्र में महिलाओं को रखा है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि आज करोड़ों जन धन खातों के माध्यम से महिलाएं मुख्य धारा से जुड़ रही हैं।
जब धुएं में गृहिणियां घुट घुट के जी रही थी, तब आपने उज्ज्वला जैसी योजना ला करके उन बहनों को जीवन जीने की सरल राह दिखाई। प्रधानमंत्री जी, आपके आने के बाद करोड़ों जन धन खातों के माध्यम से महिलाएं देश की मुख्य धारा इकोनॉमी में जुड़ी, उनके खाते खुले, उनके खातों में पैसे डाले गए।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न दलों के शीर्ष नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बीरभूम में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के कुशासन की कड़ी आलोचना की। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक जनसभा में आरोप लगाया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए के बाद भाजपा एनआरसी लागू करने की कोशिश कर रही है। तमिलनाडु में राज्य भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने आज सत्तूर में चुनाव प्रचार किया। डीएमके सांसद कणिमोजी ने तिरुनेलवेली में चुनाव प्रचार करते हुए एआईएडीएमके की आलोचना की। तमिलनाडु विधानसभा चुनावों का प्रचार तेज हो गया है। निर्वाचन क्षेत्र प्रोफाइल की श्रृंखला में आज हम विरुधुनगर जिले की जानकारी दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
इस जिले में 225,461 मतदाता हैं। यहां 288 मतदान केंद्र हैं। यहां 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनके नाम है सत्तूर, राजपालयम, श्री विल्ली पुत्तूर, विरुधुनगर, अरुप्पुकोट्टई और तिरुचुली। विरुधुनगर जिले का सत्तूर प्रमुख निर्वाचन क्षेत्र है। राज्य भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन के यहां से चुनाव लड़ने के कारण ये निर्वाचन क्षेत्र महत्वपूर्ण हो गया है। डीएमके के मौजूदा विधायक एआरआर रघुरामन यहां से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र का गठन 1952 में हुआ था। केकेएसआर रामचंद्रन एआईएडीएमके उम्मीदवार के रूप में और डीएमके उम्मीदवार के रूप में 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। अब वे विरुधुनगर जिले के अरुप्पुकोट्टई से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
सर्वोच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले आज एसआईआर प्रक्रिया पर दलीलों की सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। एक रिपोर्ट।
पश्चिम बंगाल में 2 चरणों के मतदान के लिए मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जा चुका है। शीर्ष न्यायालय की निगरानी में 27 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद हटाए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय अधिकरण द्वारा स्वीकृत वैध मतदाताओं के बारे में भी निर्णय ले सकता है। यदि अधिकरण उन्हें वैध मतदाता के रूप में मान्य करता है तो सर्वोच्च न्यायालय निर्णय लेगा कि वे इस चुनाव में वोट डाल सकते हैं या नहीं। अधिकरण की कार्यवाही भी आज से शुरू हो रही है। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश भारती और पवन कुमार शर्मा विधानसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए आज पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं। 3 दिन के दौरे में श्री ज्ञानेश भारती पश्चिमी बर्धमान, पूर्व बर्धमान, हुगली और उत्तरी 24 परगना में जिला चुनाव अधिकारियों, पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और पर्यवेक्षकों के साथ बैठक करेंगे। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने पश्चिम बंगाल के मालदा में मोथाबारी ग्राम पंचायत से इंडियन सेक्युलर फ्रंट के एक पंचायत सदस्य गोलम रब्बानी को गिरफ्तार किया है। रब्बानी पर मोथाबारी में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की अधिनिर्णय प्रक्रिया में शामिल न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने और परेशान करने का आरोप है। ईरानी बंदरगाहों से जहाजों की आवाजाही अवरुद्ध करने की अमरीका की घोषणा के बाद वैश्विक बाजारों में तेल की कीमतें 100 अमरीकी डॉलर से अधिक हो गई हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 8.5% की वृद्धि के साथ 102.37 डॉलर प्रति बैरल हो गई, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट में 9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और 105.34 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई। पश्चिम एशिया संघर्ष गहराने के साथ घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच दोपहर बाद 1% की गिरावट पर कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 763 अंक गिरकर 76,787 पर, जबकि निफ्टी 231 अंक गिरकर 23,820 पर था। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में श्रमिकों के कल्याण और उनके लिए बेहतर कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित करने के वास्ते नए उपाय लागू किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में चुनिंदा जिलों के मुद्दों पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की गई। औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को 24 घंटे के भीतर उद्योग निकायों और निजी इकाइयों से श्रमिकों के मुद्दों का समाधान करने को कहा गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
नए निर्देशों के तहत श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन अनिवार्य किया गया है, विशेष रूप से गौतम बुद्ध नगर में। इनमें समय पर वेतन का भुगतान और बिना किसी कटौती के 2 गुना ओवरटाइम वेतन देना शामिल है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश मिलना चाहिए और रविवार को किए गए किसी भी काम के लिए 2 गुनी दर से मुआवजा दिया जाना चाहिए। वित्तीय सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर महीने की 10 तारीख तक 1 मुश्त वेतन का भुगतान करें और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए वेतन पर्ची जारी करें। श्रमिकों की सुरक्षा, गरिमा और अधिकारों पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उचित वेतन, सुरक्षित कार्य वातावरण और बुनियादी सुविधाएं देना अनिवार्य है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के माछपल्ली क्षेत्र में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। गोलीबारी में महिला माओवादी कमांडर रूपी मारी गई। पुलिस के अनुसार रूपी लंबे समय से सक्रिय थी और उसे आत्मसमर्पण करने को कहा जा रहा था। गुजरात में सुरेंद्रनगर जिले के छाराड़ गांव के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना में 7 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और अन्य घायल हो गए। इस घटना में राजकोट से बहुचराजी जा रहे श्रद्धालुओं के एक समूह को ट्रक ने कुचल दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सुविख्यात पार्श्व गायिका आशा भोसले का अंतिम संस्कार आज शाम 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। कल मुंबई के एक अस्पताल में 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। लोग अंतिम दर्शन के लिए आशा भोसले के लोअर परेल के कासा ग्रांड स्थित आवास पर पहुंच रहे हैं। अभिनेत्री आशा पारिक, संगीतकार AR रहमान, सुदेश भोसले, तब्बू और क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, मुंबई के मेयर ऋतु तावड़े और NCP के नेता सुप्रिया सुले सहित अन्य गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रतिष्ठित गायिका का शव तिरंगे में लपेट कर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। समाचार कक्ष के श्रद्धांजलि।
सुविख्यात पार्श्व गायिका आशा भोसले कल इस दुनिया से रुखसत हो गईं। उन्होंने 20 से अधिक भाषाओं में 12,000 से अधिक गीतों को अपनी आवाज दी। आशा ताई ने 1943 में गायन शुरू किया। उनके गायन में संगीत के हर रूप की झलक मिलती है, जिसमें गजल, पॉप और कैबरी शामिल हैं। उन्होंने उड़े जब जब जुल्फें तेरी और दो लफ्जों की है कहानी जैसे ना जाने कितने ही गीत दिए। आज आशा ताई भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गीतों की समृद्ध विरासत सदा ही हमारे मन मस्तिष्क पर गूंजती रहेगी।
द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 1919 में आज ही के दिन जलियांवाला बाग में शहीद होने वाले स्वाधीनता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत में पिछले 11 वर्ष में खेल के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है। रक्षा मंत्री ने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ के संसद खेल महाकुंभ कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारत के महापंजीयक कार्यालय के उपमहानिदेशक विश्वजीत दास के साथ जनगणना 2027 स्वगणना कैसे करें विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भारत की 21वीं सदी के निर्णायक सुधार के समर्थन का आह्वान किया। विशेष संसद सत्र से पहले नई दिल्ली में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव प्रचार तेज, विभिन्न दलों के शीर्ष नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। अमरीका द्वारा ईरान के बंदरगाह की नाकेबंदी की घोषणा के बाद तेल की कीमतों में $100 प्रति बैरल से अधिक की वृद्धि। पश्चिम एशिया संकट गहराने के साथ सेंसेक्स में लगभग 1.2% की गिरावट, निफ्टी में लगभग 231 अंक की गिरावट दर्ज। सुविख्यात पार्श्व गायिका आशा भोसले का अंतिम संस्कार आज मुंबई में, और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम हैदराबाद में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।